समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं तमाम खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे और हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी और कार्यक्रम के अंत में हम विशिष्ट लोगों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या फिर जन्मदिन है। श्रोताओं, परिक्रमा के संक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में वीसी प्रमोद। स्वागत है प्रमोद आपका भी।
Hello, Nikhil, and a very good afternoon to all our listeners tuned into Parikrama on 100.1 FM Gold. Yes, you're right, Nikhil. We have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes, but we begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi to address the concluding session of the three-day National Conference of Chief Secretaries in New Delhi today.
गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान अलंकरण से सम्मानित किया। माओवादियों से हथियार डालकर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की।
That's right. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah paid tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on his death anniversary today.
महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज नागपुर में किया जाएगा।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2-3 डेज। And now time for our segment, Dateline India. Today we are remembering the Iron Man of India as the nation is paying homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his death anniversary today. Work is worship, but laughter is life. Anyone who takes life too seriously must prepare himself for a miserable existence. इसलिए निखिल आप हरदम स्माइल करते रहते हैं, नहीं? Anyone who greets joys and sorrows with equal facility can really get the best of life. The statement can easily be mistaken as a thoughtful musing of a spiritual saint who has renounced the world and has dedicated his life to a greater cause. It is difficult to believe that the aforementioned is one amongst the many non-political quotes of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel.
वाकई प्रमोद, इस मिट्टी में कुछ अनोखा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास स्थान रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे जो राष्ट्रीय एकता और मजबूत नेतृत्व के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक गतिशील राजनीतिक नेता, उत्कृष्ट आयोजक, सक्षम प्रशासक और कुशल वार्ताकार भी थे।
That's right. In fact, Nikhil, मैंने जो भी वीडियोस देखा है YouTube पे, उनमें हरदम मुझे एक स्माइलिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखे हैं।
बिल्कुल, आप कहीं भी उनकी अगर स्टेचू भी देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं।
जी बिल्कुल। A trained lawyer, he gained fame as a key figure in the Indian National Congress, advocating for civil rights and farmers' interests. His strategic acumen earned him the title the Iron Man of India, particularly for his efforts in integrating over 500 princely states into the Indian Union post independence.
सरदार पटेल ने कई रियासतों को खत्म करने और उनके क्षेत्रों को शेष भारत के साथ एकीकृत करने में नेतृत्व किया। रियासत के संबंध में उन्होंने कहा कि एक अंग का विच्छेदन अप्रिय है, लेकिन यदि भारत के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो ये एक भयानक त्रासदी होगी।
That's right. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to the Iron Man of India and on his death anniversary. In a social media post, the Prime Minister remarked that the personality and work of Sardar Vallabhbhai Patel will continue to be an inspiration for the countrymen, for the unity and integrity of the nation, and the achievement of the resolution of a developed India.
गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने 550 से अधिक रियासतों को एकीकृत करके आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखने का श्रेय सरदार पटेल को दिया। भारत के लौह पुरुष को याद करते हुए श्री शाह ने उन्हें देश की एकता का प्रतीक बताया और कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनके समर्पण ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। गृहमंत्री ने आगे कहा कि सरदार पटेल का महान व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का संकल्प राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाले नागरिकों का सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा।
That's right. सरदार पटेल's life and career is a lesson in grit, sagacity and decisive leadership. He earned the reputation of the Iron Man of India because of the manner in which he brought about and maintained internal stability as Home Minister in the wake of the partition of the country. In fact, Nikhil, सोचने वाली बात ये कि 550 princely states को unite करना is not an easy thing, है ना?
ये वाकई ऐसे कहते हैं Herculean task था एक जमाने में.
Absolutely.
और प्रमोद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने जो आधुनिक भारत को आकार देने में भूमिका निभाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. उनकी विरासत, अखंडता, दृढ़ संकल्प और एकीकृत राष्ट्र की खोज के प्रतीक के रूप में पीढ़ियों को प्रेरित करती है और हमेशा ये करती रहेगी.
That's right. He is recognized as a real unifier of India for his colossal contribution to integrate and make India a united and an independent nation. He requested the people of India to live together by uniting in order to create Shreshth Bharat. This ideology is still reflected in the Atmanirbhar Bharat initiative which seeks to make India self-reliant.
श्रोताओं को बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में झावेर भाई पटेल और लाडबा पटेल के घर हुआ था. कड़ी मेहनत करने और धन बचाने के बाद उन्होंने 36 साल की उम्र में इंग्लैंड की यात्रा की जहां उन्होंने मिडिल टेम्पल में कानून का कोर्स पूरा किया. वापस लौटने पर सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सफल बैरिस्टर बनकर के सार्वजनिक सेवा में अपना करियर शुरू किया. जब भारत को आजादी मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई और गृह मामलों, राज्यों तथा सूचना और प्रसारण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की देखरेख की. उनका नेतृत्व नवजात राष्ट्र के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण था. खासतौर पर राजनीतिक एकीकरण और प्रशासनिक शासन के क्षेत्र में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था.
That's right. Patel spearheaded the integration of over 560 princely states into the Indian Union. His pragmatic approach combined with tact and diplomacy led to the peaceful accession of most princely states, with significant exceptions like Hyderabad and Junagadh resolved through decisive action. Patel's efforts in preventing the balkanization of India earned him the title the Iron Man of India.
सरदार पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं की भी नींव रखी थी और उन्हें स्टील फ्रेम और नए स्वतंत्र देश के लिए एक एकीकृत शक्ति के रूप में देखा जाता है. उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी जिसे आधुनिक भारत के स्टील फ्रेम के रूप में भी जाना जाता है. अनुशासित और निष्पक्ष सिविल सेवा का पटेल का दृष्टिकोण आज भी भारत के प्रशासनिक ढांचे का अभिन्न अंग बना हुआ है जिससे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में उनकी उपाधि और भी सशक्त हुई है.
That's right, Nikhil. He integrated the farmers' cause in the Khed Satyagraha 1918 and Bardoli Satyagraha 1928 with the Indian Freedom Movement. Women of Bardoli bestowed the title Sardar on Vallabhai Patel, which means a chief or a leader. During the 1930 Salt Satyagraha, prayer and fasting movement, Sardar Patel served 3 months imprisonment. Further, he worked extensively against alcohol consumption, untouchability, caste discrimination and for women's emancipation in Gujarat and outside.
2018 में अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके प्रयासों और आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में खड़ी है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है. 182 मीटर की ऊंचाई पर यह चीन की स्प्रिंग टेंपल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची है और अमरीका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर की ऊंचाई से लगभग दोगुनी है. जनवरी 2020 में इसे शांघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 8 अजूबों में जोड़ा गया था. ये भारत के गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और सरदार सरोवर बांध के सामने है.
द स्टैच्यू इज नोन एज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज क्रेडिटेड फॉर यूनिफाइंग ओवर 560 प्रिंसली रिपब्लिक्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया टू बिकम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. He played a crucial role in bringing the people of the country together to fight for the independence of the nation. His aura was so strong that he was able to unite the people of the country against a common cause.
श्रोताओं आपको बता दें कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरदार पटेल के प्रयास और उस दिशा में किए गए उनके कठिन प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक है. वो न सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए बल्कि आज के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है.
Absolutely, Nikhil. The negligence of a few could easily send a ship to the bottom. But if it has the wholehearted cooperation of all on board, it can safely be brought to the shore.
और सरदार पटेल के शब्दों में यदि हम कहें तो साझा प्रयास से हम देश को एक नई महानता तक ले जा सकते हैं जबकि एकता की कमी हमें नई आपदाओं के लिए उजागर करेगी. और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि आपके लिए उनके पास आज क्या विशेष है। प्रमोद, आज कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
हम शुरुआत कर रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, केरला।
जी,
आपको फिल्मों का शौक है निखिल?
काफी हद तक है।
ठीक है, वेरी गुड। द 29th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला इज गोइंग ऑन इन त्रिवेंद्रम। रिपोर्ट।
It is showtime for the capital city of Kerala. The 29th International Film Festival of Kerala, IFFK, kick-started last Friday. It is hosted by the Kerala State Chalachitra Academy on behalf of the State Department of Cultural Affairs. The 8-day-long film festival will end on December 20th. Chief Minister Pinarayi Vijayan inaugurated the festival. Actress Shabana Azmi, who completed 50 years of her acting career, was the chief guest at the inaugural ceremony. Famous Hong Kong director Anne Hui was honored with the Lifetime Achievement Award. The Brazilian film I Am Still Here was the inaugural film. The festival will screen 177 films from 68 countries across 15 theaters in the capital city. This includes 14 films in the international competition. Other attractions are Malayalam Cinema Today, Indian Cinema Now, World Cinema, Festival Favorites, Country Focus, Retrospective, Female Gaze, Latin American Package, Kaleidoscope, Midnight Cinema, Animation Films, Restored Classics and Homage. Over 13,000 delegates and over 100 film professionals are expected to attend the gala. The capital city of Kerala, Thiruvananthapuram, is witnessing huge crowd of film enthusiasts, including foreigners, for the film festival. Mayusha from Thiruvananthapuram for Parikrama.
और अब हम चलते हैं श्री विजयपुरम, जहां से संगीता जी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है कि द्वीप समूह में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सकारात्मक विषयों पर फिल्में बनाने पर जोर दिया गया, जिसमें हमारे देश की संस्कृति और विरासत की झलक मिली है। एक रिपोर्ट।
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार शर्मा ने कहा कि छात्रों को सकारात्मक विषयों पर फिल्में बनानी चाहिए, न कि विनाशकारी विचारों पर। यह रोड शो अगले वर्ष फरवरी माह के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उन्होंने छात्रों से इस तरह से फिल्में बनाने का आग्रह किया जो राष्ट्र के प्रगतिशील विचारों को दर्शाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कला जो भी हो उसमें हमारी संस्कृति और विरासत झलकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें पश्चिमी संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश की विरासत की पृष्ठभूमि बहुत विशाल है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही कई मूल स्क्रिप्ट हैं। छात्रों को सौर ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर वृत्त चित्र बनाने के बारे में सोचना चाहिए। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रख्यात फिल्म निर्माता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता नरेश चंद्र लाल ने कहा कि जहां चाह है वहां सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि द्वीपों के छात्रों के पास जो प्रतिभा उपलब्ध है वह पूरे देश में देखने को नहीं मिलती। किसी को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि फिल्म बनाने के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, यह ज्ञान है जो फिल्म बनाने में अधिक महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्में बनाने के लिए जुनून और साहस की जरूरत होती है। इस अवसर पर बोलते हुए आकाशवाणी श्री विजयपुरम के सहायक निदेशक एस मुरली ने छात्रों से रेडियो सुनने, टेलीविजन देखने और समाचार पत्र पढ़ने के लिए खुद को तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह के ऑडियो विजुअल माध्यम से सामान्य ज्ञान प्राप्त करके ही वे बेहतर फिल्में बना सकते हैं। परिक्रमा के लिए एस मुरली के साथ श्री विजयपुरम से मैं संगीता देवनाथ।
And Nikhil from Andaman Nicobar Islands, हम चलते हैं पंजाब की तरफ।
जी जरूर।
In a proud moment for Punjab, 8 alumni of the Maharaja Ranjit Singh Armed Forces Preparatory Institute (MRSAFPI) and one from the Maui Bhago Ahmed Forces Preparatory Institute (AFPI) for girls in SAS Nagar Mohali were commissioned into the Indian Army and Air Force. Let's hear more from our correspondent.
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ पंजाब के मोहाली में स्थापित महाराजा रंजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज और माई भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स, यह दोनों ही संस्थान पंजाब के युवाओं को भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर्स भर्ती करवाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। महाराजा रंजीत सिंह संस्थान के 8 विद्यार्थियों से 6 भारतीय सेना में और 2 भारतीय वायुसेना में कल कमीशन हुए हैं। वहीं माई भागो संस्थान की एक महिला कैडेट भी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर सांसद बनी हैं। महाराजा रणजीत सिंह संस्थान के निदेशक सेवामुक्त मेजर जनरल अजय चौहान ने बताया कि वर्ष 2011 में स्थापित किए जाने के बाद से अब तक इस संस्थान से 168 कैडेट्स भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन ऑफिसर बने हैं, जबकि माई भागो संस्थान में 2011 में सिखलाई शुरू होने के बाद से 30 महिला अधिकारी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में शामिल हुई हैं। यह दोनों संस्थान एनबीए की तैयारी करवा पंजाब के युवाओं में सेना में भर्ती होने का जज्बा बढ़ते हैं। माई भागो संस्थान के डायरेक्टर सेवामुक्त मेजर जनरल जसबीर संधू व मेजर जनरल चौहान ने अपने इन कैडेट्स की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। परिक्रमा के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
और जलंधर से हम आते हैं नई दिल्ली, जहां पर मंडी हाउस स्थित रविंद्र भवन परिसर में पुस्तकायन पुस्तक मेले का आज अंतिम दिन है। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रकाशक अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध करा रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि 10 दिन तक चले इस पुस्तक मेले ने अनगिनत पुस्तक प्रेमियों को एक आनंदपूर्ण अनुभव दिया। आइए सुनते हमारे संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट।
पुस्तकायन पुस्तक मेले में अलग अलग प्रकाशकों के स्टॉल पर काफी चहल पहल रही तथा लोग अपनी पसंदीदा लेखकों और कविताओं के साथ साथ नए रचनाकारों द्वारा लिखी गई किताबें खरीदते दिखे। पठन पाठन में लोगों की रुचि बढ़ने के लिए पुस्तक मेले में कई सत्र भी आयोजित किए गए थे। इनमें हिंदी कवि सम्मेलन, बहुभाषी कविता पाठ, मुशायरा, गजल संध्या, लघु कथा वाचन और विभिन्न विषयों पर चर्चाओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए मेले में कहानी पाठ और चित्रकारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित किए गए थे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आगंतुक वसंत कुमार ने बताया कि उन्हें इस मेले में साहित्य से संबंधित काफी जानकारी मिली।
साहित्य अकादमी का प्रकाशन है या गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का प्रकाशन है और जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, किताब घर, राजपाल वगैरह के स्टॉल्स को देखा मैंने और यह पाया कि बहुत सारी किताबें जो अब नई पीढ़ी में लोग किताबें पढ़ने से जो चकरा रहे हैं, जो दूर जा रहे हैं, जो ऑनलाइन जो पढ़ाई का एक तरीका आ गया है, लेकिन यहाँ देख के खुशी हुई कि किताबें अभी भी उपलब्ध हैं और यंग जनरेशन के लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं। चौकिया ही सही, लेकिन इसी बहाने किताबों के प्रति उनका प्रेम जो है वो देखने को मिल रहा है।
वहीं मेले में आए प्रवीण कुमार मिश्र ने आकाशवाणी को बताया कि उन्हें यहाँ पुस्तकों का एक भव्य संचयन देखने को मिला, जिसमें पुराने से लेकर नवोदित लेखकों की संरचनाएं शामिल थी।
जब हम लोग अपनी युवावस्था में 80 के और 90 के दशक में जिन लेखकों को पढ़ा था, उनकी रचनाएं नए कलेवर में, नए रंग रूप में दिखी और उसके साथ ही साथ कुछ नए और नवोदित लेखकों की भी बहुत ही आकर्षक रचनाएं यहाँ देखने को मिली, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है साहित्य अकादमी का और उन्होंने बहुत ही रुचकर सा एक यहाँ पर पुस्तकायन बुक फेयर लगाया है।
निशुल्क प्रवेश और किताबों पर आकर्षक छूट के साथ पुस्तक मेले ने राजधानी के लोगों में पाठन की विनोदपूर्ण और सार्थक व्यवहार को बढ़ावा दिया। परिक्रमा के लिए आदर्श, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
And Nikhil, now for some sports news. In hockey, India will face China in the final of the Women's Junior Asia Cup at Muscat in Oman today. The match will begin at 8:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier in the tournament, China defeated India in a pool match narrowly by 2-1. China had grabbed the top position in Pool A with 9 points, while defending champions India were at the second place. Yesterday, the women in blue secured a dominant 3-1 win over Japan to cruise into the final. In the other semi-final, China thrashed last edition's runners-up South Korea 4-1. To play the title clash.
और अब क्रिकेट की बात करें तो ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए थे। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच चौथे विकेट के लिए 241 रन की महत्वपूर्ण भागीदारी हुई। ट्रेविस हेड ने श्रृंखला में लगातार दूसरा शतक बनाया है। वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों देशों के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर रहे। भारत ने पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जबकि एडिलेड में दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी।
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, who left us on 15th of December 1950. The idea of unified India was central in the understanding of Sardar And to this end, he also promoted the idea of a national language. In his iconic speech at Madras in 1949, he affirmed his understanding of the national language and the idea of India.
You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language.
Andhra Mata Odilo Na Amara Jeevi Asul Bhasha Vakandadu Daivilki.
We also remember Gandhian freedom fighter Potti Sriramulu, who died on the 15th of December 1952. He was imprisoned for participating in the 1930 Salt Satyagraha. Later, he also participated in the individual Satyagraha and the Quit India movement and was imprisoned on three occasions. He was a devout follower of Mahatma Gandhi and joined the Gandhi Ashram in Kumaravollu, Andhra Pradesh. Ramulu undertook three fasts during 1946 to 1948 for the rights of the so-called lower caste people to enter holy places in the temples of Nellore. Commenting on Potti Sriramulu's dedication and fasting ability, Mahatma Gandhi once said that if only he had 11 more followers like Sriramulu, he will be able to win freedom from British rule in a year. In 1952, Sriramulu took up the cause of a separate state for Telugu-speaking areas of Madras state. He gave supreme sacrifice when he died after 58 days of fasting in support of having a separate Andhra. In his honour, Nellore district is named after him. We salute this great Indian patriot.
We also remember nationalist Satish Chandra Samanta, who was born on 15th of December 1900. He is credited for the formation of a parallel government named Tamradlipta Jatiya Sarkar in Tamluk, West Bengal, during the Quit India movement.
Satish Chandra quit Bengal Engineering College in his second year of study in order to fight for the freedom of India. He joined the local branch of the Indian National Congress and later became the president of Tamluk Congress Committee.
Tamralipt Jatiya Sarkar was formed on 17th of December 1942 and Satish Chandra looked after its functioning until his arrest in June 1943. The parallel government lasted till September 1944 and undertook cyclone relief work, gave grants to schools and organized an armed Vidyut Vahini.
After independence, Satish Chandra Samanta remained as a Member of Parliament for more than three decades and dedicated his life to public service till his death on the 4th of June 1983. We salute this great Indian.
We also remember freedom fighter and social activist Raghunath Keshav Khadelkar, who was born on 15th of December 1905 in Ratnagiri district of Maharashtra. Khadelkar was one of the founding members of the Congress Socialist Party in 1934. He served several terms of imprisonment between 1930 and 1945 during India's freedom movement.
After independence, he helped form the All India Peasants and Workers Party in 1948. In 1955, he took a leading part in forming the All India Mazdoor Kisan Party. During his term as Union Minister for Labour, he is credited with championing the Khadelkar formula to raise the minimum bonus payable to workers from 4% to 8.33%. We salute this great Indian.
और प्रमोद समय हो चला है इस कार्यक्रम में आप जानी मानी हस्तियों को याद करने का, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं पोट्टी श्री रामुलु को, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे मद्रास प्रदेश से पृथक आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए अनशन करके अपने प्राण त्याग देने वाले व्यक्ति थे। गांधी जी के पक्के अनुयायी थे और उन्होंने नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जेल की सजाएं भी भोगी थी। उन्होंने मध्य निषेध, हरिजनों के उद्धार, खादी और ग्रामोद्योग के कार्यों में भाग लिया। और आपको बता दें कि 1930 के नमक सत्याग्रह, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
That's right. Today is the death anniversary of Rasoolan Hussain, popularly known as Rasoolan Bhai. She was born in 1902, but she died on the 15th of December 1974. She was a leading Indian Hindustani classical musical vocal musician. Belonging to the Banaras Gharana, she specialized in the romantic Puram Ang of the Tumri musical genre and Tappa. Rasoolan Hussain was born in 1902 at Mirzapur in Uttar Pradesh in a poor family, though she inherited the musical legacy of her mother Adalat and displayed her grasp over classical ragas at an early age. In fact, Nikhil, inka thumri bahut famous hai, zara sun le.
Waqai kafi pasand kiya jata hai logon ke dwara.
Ji.
आज ही हम याद कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को, उनकी आज पुण्यतिथि है। वे भारतीय वायुसेना में पायलट थे और शौर्य चक्र से सम्मानित थे। तमिलनाडु की कुन्नूर की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर हादसे में वे इकलौते बचे थे और आपको बता दें बेंगलुरु के सैन्य अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर कुछ दिनों बाद वे भी अपनी जिंदगी की जंग हार गए थे। आज ही हम याद कर रहे हैं गौर किशोर घोष को, उनकी पुण्यतिथि है। वे एक कुशल पत्रकार और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। विकासशील देशों में ईमानदारी से प्रगतिवादी और प्रभावी लेखन पाना उनके अनुसार काफी मुश्किल रहा और खतरनाक भी रहा। सरकारों के अलावा दूसरी ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं रही हैं जिन पर उन्होंने अपने लेख लिखे। और आपको बता दें कि अपने लंबे संघर्षपूर्ण रचनात्मक लेखन और पत्रकारिता के जरिए अपनी बातों को निर्भीकता पूर्वक उन्होंने आगे रखा और साथ ही नागरिकों तथा प्रेस की आजादी के लिए भी अपने जुझारू तेवर दिखाए थे। उन्हें 1981 का मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। और अब हम याद करते हैं उषा मंगेशकर को, जिनका जन्मदिन है। वे भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला कही गई लता मंगेशकर की छोटी बहन है। उषा मंगेशकर ने अपने गायकी के करियर में हिंदी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, नेपाली, आसामी और कन्नड़ जैसी भाषाओं में गीत गाए हैं और उन्होंने बॉलीवुड फिल्म सुबह का तारा से अपना डेब्यू किया था। लेकिन आज हम आपके लिए जो गीत लेकर आए हैं वो वाकई लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। फिल्म इंतजार से
Nikhil, today is also the birthday of Geeta Fogat. She was born today in 1988, so today is her 36th birthday. She's a freestyle wrestler who won India's first ever gold medal in wrestling at the Commonwealth Games in 2010. She was also the first Indian female wrestler to have qualified for the Olympic Games. Geeta Fogat was born in Balali village of Charkidhari, Haryana. Her father, Mahavir Singh Fogat, was a former wrestler himself and a Dronacharya Award recipient. And I'm sure, Nikhil, aapne Dangal zarur dekhi hogi film
Aamir Khan ki. हुई है
वो इसके ऊपर बेस्ड, इसका गाना सुन लेते हैं।
जी
समर घट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्द।
श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है बाईचुंग भुटिया का। वे भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है और 1999 में अर्जुन पुरस्कार जीता है उन्होंने। आपको ये बता दें कि 1995 में नेहरू कप टूर्नामेंट के लिए भारत के लिए गोल दागने वाले बाईचुंग भुटिया सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे।
Today is also the birthday of Rohini Muletti, known professionally as Rohini, an Indian actress, screenwriter, dubbing artist and lyricist. She has mainly acted in Malayalam, Tamil, Telugu and also in Kannada films. And she won the National Award for her Malayalam film Aa Ratri. And we have a song from that film.
और श्रोताओं, आज ही जन्मदिन है बाबुल सुप्रियो का। वे एक पार्श्व गायक, लाइव परफॉर्मर और टीवी होस्ट तथा अभिनेता हैं। उनका पूरा नाम बाबुल सुप्रियो बरल है। वे अपने 90 के दशक के गायक के रूप की छवि के लिए अधिक पहचाने जाते हैं। और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए निखिल और प्रमोद को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर संपन्न करने की।
नमस्कार, नमस्कार।